हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 29 एंड 30। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशः कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। पहला स्कंद छठा अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद तथा वेद व्यासी का संवाद। कृपया मेरे साथ साथ इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि कहते हैं, कल्पान्त इदमादाय शयानीं भस्युदन्वत शिष्यैशोरनु प्राणं विविशेन्तर अहं विभो। कल्पान्त इदमादाय शयानीं भस्युदन्वत शिष्यैशोरनु प्राणं विविशोऽन्तरहं विभो। कल्पान्त इदमादाय शयानीं भस्युदन्वत शिष्यैशोरनु प्राणं विविशेऽन्तरहं विभो। कल्पान्त इदमादाय शयानीं भस्युदन्वत शिष्यैशोरनुप्राणम् विविशेयान्तरहं विभो कल्पान्त इदमादाय शयानेऽहं शयानेऽम्बस्युदन्वतः शिष्यैशोरनुप्राणम् विविशेयान्तरहं विभोः कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्बस्युदन्वतः शिष्यैशोरनुप्राणम् विविशेयान्तरहं विभो कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्बस्युदन्वतः शिष्यैशोरनुप्राणम् विविशेयान्तरहं विभो शब्दकार कल्पान्ते अथत् धम्मा के एक दिन के अंत में इदम यह आदाय लेकर या समेट कर शयने शयन करते हुए अम्बसी कारण जल में ओदनवतः विनाश या संहार शिष्य ईशो भगवान नारायण का लेटना अनुप्राण श्वास लेना विविशे प्रवेश किया अंतह भीतर अहम मैंने विभो ब्रह्मा जी के। अनुवाद कल्प के अंत में जब नारायण विनाश के जल में लेट गए और ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे तो मैं भी उनके श्वास से भीतर चला गया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे कि नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में। भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। भगवान का जन्म तथा उनकी कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। उसका प्राकट्य तथा तिरोधान भगवान के समस्तरीय है। अतः भगवान तथा उनके भक्त एक साथ तथा भिन्न आध्यात्मिक जीव हैं। वे एक ही कोटि के ब्रह्म से संबंधित हैं। श्लोक नंबर 30 कृपया रिसाइट कीजिए। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिक्षतः मरीचि निशाविषयः प्राणेभ्योऽहं च जिज्ञिरे। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिक्षतः मरीचि निशाविषयः प्राणेभ्योऽहं च जिज्ञिरे। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं सुसृक्षतः मरीचि निश्राविषयः प्राणेभ्योऽहं च जिज्ञिरे। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं सुसृक्षतः मरीचि मिश्राविषयः प्राणेभ्योऽहं च जिज्ञिरे। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं सुसृक्षतः मरीचि मिश्राविषयः प्राणेभ्योऽहं च जिक्किरे। शब्दों का अर्थ सहस्र, एक हजार, युग अर्थात युग 43 लाख इयर्स पर्यंत, अवधि के अंत में उत्थाय बीतने पर, इदम इस सुसृक्षतः पुनः सृजन करने की इच्छा प्रकट की। मरीचि मिशा, मरीचि जैसे ऋषि विषय सारे ऋषिगण प्राणेभ्यः उनकी इंद्रियों से, अहम मैं च भी जिज्ञारे, जिज्ञारे का मतलब है प्रकट हुआ। अनुवाद, 4,30,00,000 के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि के लिए जागे तो मरीचि अंगिरा अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि 4,32,00,000 होती है। उसका उल्लेख श्रीमद् भागवत गीता में भी हुआ है। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदक्षायी विष्णु के शरीर में के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और नारद भी इसी तरह प्रकट हुए। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य उसी शरीर में निद्रा से जागता है। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अप्रकट होते रहते हैं। यह शरीर बद्ध जीवों से भिन्न है क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। पहला स्कंद छठा अध्याय, इसका शीर्षक है नारद तथा वेद व्यास जी का संवाद। अत्यंत सुंदर नारद मुनि अपने पूर्व जन्म के विषय में बता रहे थे और कल हमने पढ़ा 28 श्लोक में। नारद मुनि ने कहा, प्रयुज्यमाने मैताम शुद्धम भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिकम। के मैंने ये पांच भौतिक शरीर का परित्याग किया और भगवान के पार्षद के अनुरूप दिव्य शरीर को भागवतीं तनुम प्राप्त किया और इस तरह से कर्म फल के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। और आज बता रहे हैं नारद मुनि, कहते हैं कल्पांत इदम आदाय, कल्प अंत, कल्प किसको बोलते, अंत माना खत्म होता है, कल्प का मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, उसको कल्प कहा जाता है। और वो एक दिन कितना बड़ा होता है ये हमें याद रखना चाहिए, पता होना चाहिए कि कल्प कितना बड़ा होता है। जैसे हमारे कलयुग है उसकी आयु कितनी है, 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष का एक कलयुग होता है। और उसका डबल यानी कि उसका अगर 4,32,000 को डबल करें, 4,32,000 और दूसरा 4,32,000 कितने हुए, 8,64,000, 8,64,000 वर्ष का एक द्वापर युग होता है। और जो कलयुग है ना उसकी आयु को 3 गुना अगर करें 4,32,001, 4,32,002, 4,32,003 तो कितना होगा 12,96,000। 12,96,000 का त्रेता युग और 4,32,000 यानी कलयुग का 4 गुना अगर बढ़ाएंगे तो 17,28,000 का एक सतयुग। अब सतयुग प्लस द्वापुर प्लस त्रेता प्लस कलयुग, ठीक है, यानी 4,32,000 प्लस 8,64,000 प्लस 12,96,000 प्लस 17,28,000 इनको सबको प्लस करेंगे ना तो आएगा 43,20,000। और 43,20,000 का क्या होता है, एक चतुर्युग होता है, सतयुग कलयुग द्वापुर और त्रेता। ये चतुर्युग कितने इयर्स का होता है, 43,20,000 का। जब ऐसे 1,000 चतुर्युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। 1,000 बार जब चतुर्युग यानी 1,000 बार द्वापर युग बीतेगा, 1,000 बार त्रेता युग बीतेगा, 1,000 बार सत्ययुग बीतेगा, 1,000 कलयुग इस तरह बीत जाएंगे ना तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीतते हैं। और वो कितना होता है, वो 4,32,00,000,000 वर्ष जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे खत्म होते हैं। ये दिन के 12 घंटे होते हैं, ठीक है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात होती है, यानी ब्रह्मा जी का एक कंप्लीट दिन जो 24 घंटे का होता है कितने का होता है, 8,64,00,000,000 वर्ष के ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, पूरा कंप्लीट दिन 24 घंटे। और वे से 365 दिन का एक साल होता है और ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। अब ब्रह्मा जी तो 100 साल तक जीते हैं, उसके बाद क्या होती है, महाप्रलय होती है। लेकिन जब एक कल्प खत्म होता है, एक कल्प कितना होगा, ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 4,32,00,000,000। एक कल्प खत्म होने के बाद जब ब्रह्मा जी की रात होती है तब तक के टाइम पीरियड के लिए क्या होता है कि सारे जितने भी जीव जितनी भी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की होती है वो सारी की सारी कारण दक्षिणा विष्णु के अंदर जाके सिमट जाती है। इस चीज को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अत्यंत ही सुंदर रीति से 9.8 में बताते हैं। यदि आप खोलो शास्त्र को तो पेज नंबर 304 पे लिखा है, भगवान कहते हैं प्रकृतिं स्वाम वैष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतगाममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतिर्वशात्। अच्छा, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से अंत में इसका नाश होता है। जब भगवान को सृष्टि करनी होती है, सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है। महतत्व बताया था ना मैंने आपको, 24 एलिमेंट्स होते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच महाभूत हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां 5 इंद्रियों के विषय और मन बुद्धि अहंकार, ये सब महातत्व के रूप में प्रकट होते हैं, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारण व जल में शयन करते हैं, वो भगवान जो है वो कारण व जल जो है उसमें शयन करते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में यहाँ तक के एक प्रत्येक अणु में भी प्रवेश कर जाते हैं। और इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ पर हुई है कल्पान्ते, के कल्प के अंत क्या होता है, जैसे श्लोक नंबर 7 में भगवान ने बताया है सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। 9.7 में भगवान ने बताया कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश कर जाते हैं और नए और अन्य कल्प के प्रारंभ में मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो इसी कल्प के विषय में आज हम बता रहे हैं। नारद मुनि कहते हैं कल्पांत इदमादाय, जब कल्प का अंत हुआ अर्थात जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त हुआ, इदम आदाय, जो कुछ भी संसार में है उसको समेट कर शयनेम्बस युदन्वतः, शयनी मतलब जो शयन करते हैं अम्बसी कारण जल में, उन महाविष्णु जो कारण जल में कारण दक्षिण विष्णु हैं, उनके अंदर सब कुछ सिमट गया, सब कुछ उसके अंदर अकल्प के खत्म होने तक विनाश हो गया, अदनवत यानी सब चीजों का संहार होकर उसके अंदर सिमट गया। शिष्य ईशो अनु प्राणम, शिष्य ईशो का मतलब होता है जो भगवान लेते हुए हैं, उन्होंने क्या किया अनुप्राणम यानी श्वास लिया और उसमें क्या हुआ विविशेन्तर हम विभु, उसके अंदर विविश प्रवेश कर दिया गया, सारे जो कुछ भी था जैसे ब्रह्मांड उनके रोम कुपो से निकलते हैं, श्वास से श्वास लेने से निकलते हैं और श्वास से अंदर खींचते हैं, कब खींचते हैं ब्रह्मा जी का पूरा एक दिन गुजरता है यानी 4,32,00,00,000 वर्ष जब बीतते हैं तब एक बार श्वास लेते हैं वो, और इस तरह से वो जब श्वास अंदर लेते हैं तो जो कुछ प्रकट हुआ होता है वो सब उनके भीतर चला जाता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि विविश्य अंतर हम विभो, मैं भी ब्रह्मा जी भी उनके अंदर चले गए और मैं भी उनके अंदर उनके भीतर चला गया। यही ऐसे के श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि भगवान और उनके भक्त जो शुद्ध वैष्णव होते हैं उनका प्राकृत्य और त्रोधान भगवान के ही समस्त्रीय होता है यानी भगवान के ही समान होता है। जिस तरह भगवान का इस संसार में आने का प्रयोजन क्या है कि वो इसी संसार में प्रकट होते हैं ताकि वो अपने दिव्य कार्यकलापों की सहायता से जीवों का उद्धार कर सकें, उसी तरह जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो इस संसार में अपने कर्मों को चुकाने के लिए नहीं आते, जैसे हम जैसे साधारण व्यक्ति जो होते हैं वो अपने अपराधों के कारण हमने जो बुरे कर्म किए होते हैं उनकी सजा भुगतने के लिए इस संसार में आते हैं, लेकिन जो गुरुजन होते हैं जो शुद्ध ऋषिगण होते हैं जो जैसे नारद हैं और आगे हम पढ़ रहे हैं दूसरे ऋषिगण हैं, उनको इस संसार में इसलिए नहीं भेजा जा रहा है कि उनको उनके अपराधों की सजा दी जाए, परंतु वो इस संसार में दिव्य कार्यकलापों द्वारा जीवों के कल्याण के लिए संसार में आते हैं। तो जैसे नारद और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारद ब्रह्मा के पुत्र उसी तरह हैं जिस तरह से भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, हालांकि भगवान कृष्ण किसी के पुत्र नहीं है, है ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 9.7 में पिता हमस्य जगतो माता दाता पितामह, इस संसार में जो कुछ भी दिख रहा है उसका पिता मैं हूँ, तो फिर जब वो पिता है तो फिर उनके पिता कैसे हो सकते हैं, अहम बीज पद पिता, भगवान कहते हैं बीज मैंने दिया तो उनके पिता कैसे होते हैं, केवल लीला, ये केवल दिव्य भगवान श्री कृष्ण का लीला है जिसके अनुसार भगवान किसी के पुत्र बन जाते हैं, किसी के सखा बन जाते हैं, किसी के उनके साथ रिलेशन केवल प्रेम का है, और प्रेम का आदान प्रदान जब इन लीलाओं को हम श्रवण करते हैं तो फिर हमारे अपराध क्षय हो जाते हैं और भगवान के चरणों में रति और रुचि निष्ठा स्थापित होती है। तो भगवान के आने का केवल एक ही कारण है कि इन भगवान के दिव्य लीलाओं को श्रवण करके हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार हो सके। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान तथा उनके भक्त एक साथ एक तथा भिन्न आध्यात्मिक जीव हैं। एक का मतलब है वो भी दिव्य हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं और भगवान वो दोनों दिव्य हैं, वो एक ही स्तर पर दिव्य हैं, परंतु भिन्नता क्या है कि भगवान जो है वो सेव्य है और भक्त क्या है सेवक है। दिव्य है वो भी, उनका शरीर भी दिव्य है और भगवान का शरीर भी दिव्य है, उनकी लीलाएं भी दिव्य हैं और भगवान की लीलाएं भी दिव्य। अंतर क्या है, दिव्यता में अंतर नहीं है परंतु स्टेज में, ये कि भगवान जो है वो भोक्ता है और हम जीव जो है वो भोग्य है। तो आध्यात्मिक जीव तो वो एक ही कोटि के ब्रह्म से संबंधित है। उसके आगे नारद मुनि बता रहे हैं सहस्र युग पर्यंत, सहस्र मतलब 1,000, 1,000 युग जब पर्यंत यानी उसके अंत में, 1,000 युग जब बीत गए उत्थायेदम यानी बीत गए, जब 1,000 युग बीत गए तो सुसृक्षतः का मतलब होता है पुनः सृजन करने की इच्छा प्रकट की, किसने भगवान जो के अपनी इच्छा से बारंबार इस सृष्टि को प्रकट करते हैं, और पुनः पुनः इसका नाश करते हैं। जैसे हमने अभी 9.8 में भगवान के इस शब्द को पढ़ा था, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य। स्वामवष्टभ यानी मेरी निजी इच्छा से, कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी इच्छा से विश्वजामे पुनः पुनः बारंबार उत्पन्न होती है और भूतग्रामम एवं कृष्णम अवश्यम प्रकृते वशात, और मेरी इच्छा से बारंबार इसका विनाश होता है। तो ये भगवान की इच्छा होती है और 1000 युग जब बीत गए तो भगवान की पुनः इच्छा हुई सुसृक्षतः के मैं दोबारा से इस सृष्टि का को प्रकट करूं। तो फिर भगवान ने क्या किया, कुछ ऋषियों के नाम यहाँ बताए नारद मुनि ने। मरीचि मिश्रा ऋषयः यानी मरीचि ऋषि और अंगिरा ऋषि, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। प्राणेभ्यो अहम् च जिघ्यरे, यानी कि उनके साथ साथ मैं भी संसार में उत्पन्न पुनः उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। जैसे अभी हमने पढ़ा कि सत्ययुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता युग की अवधि कितनी होती है, 43,20,000, और 43,20,000 का एक चतुर्युग होता है, और जब ऐसे 1000 चतुर्युग बीतते हैं तब ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं, और यहाँ पर उन्हीं 12 घंटों के विषय में यानी सहस्र युग, 1000 युग जब बीत गए, 1000 बार जब चतुर्युगी बीत गए, 43,20,000 वर्ष जब बीत गए, तो फिर क्या हुआ कि पुनः भगवान को सृष्टि करने की इच्छा हुई। और इस तरह से जैसे हमने पढ़ा कि 43,20,000 ईयर्स जब 1000 बार बीतते हैं तो क्या होता है, 4,32,00,000,000 वर्ष बनते हैं, और 4,32,00,000,000 वर्ष ये के क्या होते हैं, सौर वर्ष होती है, मतलब देवताओं के ऐसे वर्ष होते हैं। और इस तरह ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक यानी गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। अब वो समय क्या होता है, जब वो आधा दिन 4,32,00,000,000 वर्ष हो जाते हैं तो वो सो रहे होते हैं, आधा दिन उनका आधा दिन होता है 4,32,00,000,000 वर्ष का, और 4,32,00,000,000 वर्ष की इनकी रात होती है। तो रात के समय वो क्या करते हैं, गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में सो रहे होते हैं। यहाँ पर निद्रा और योग निद्रा का भी हमें अंतर समझना चाहिए कि उस समय वो योग निद्रा का मतलब होता है वो ऐसे हम लोगों की तरह गफलत जहालत की नींद में नहीं सो रहे होते हैं, गफलत की नींद में कि उनका पता नहीं, वो ध्यान में होते हैं कि कब भगवान की इच्छा हो, और जब भगवान की इच्छा होगी तभी मुझे सृष्टि करनी है, और जब भगवान की इच्छा नहीं होगी तभी मुझे कार्य नहीं करना। तो जैसे ही भगवान के हृदय के अंदर इच्छा होती है पुनः इस संसार को उत्पन्न करने की, तो ब्रह्मा जी अपना कार्य, सब जितने भी महान भक्त हैं वो सब अपना अपना कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। और इस निद्रा के बाद जब भगवान की इच्छा से पुनः सृष्टि की जाती है तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं वापस से उन। यहाँ पर ये बात समझने की है कि नारद मुनि का ये जो शरीर है वो हमारी तरह भौतिक शरीर नहीं है। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अपने दिव्य अंगों से, अब भगवान के भक्त और भगवान के जो भक्त और भगवान के जो शरीर है वो दिव्य होता है, वो हमारी तरह इस भौतिक पंचभूत का बना हुआ शरीर नहीं होता है, हाड़ मांस का बना हुआ शरीर नहीं होता है, बल्कि दिव्य शरीर होता है। और जैसे हम रात को सो जाते हैं और सुबह को कैसे उठते हैं तो हमारा शरीर तो चेंज नहीं होता है, सेम ऐसे ही होते हैं हम, उसी तरह से दिव्य जीव जो होते हैं जो योग निद्रा में शयन करते हैं वो क्या, वो रात को सोते हैं जब ब्रह्मा जी का रात का समय होता है तब वो सो रहे होते हैं, और जैसे ही भगवान की इच्छा से पुनः सृष्टि उत्पन्न होनी होती है तो वो उसी सह शरीर अपने उसी दिव्य शरीर के साथ उठ जाते हैं, तो उनके शरीर में परिवर्तन नहीं आता है, वो अपने दिव्य शरीर के उसमें रूप में ही प्रकट और अप्रकट होते रहते हैं। उनका शरीर हमारे शरीरों से भिन्न है, और क्योंकि इस शरीर उनके शरीर में और उनके आत्मा में कोई फर्क नहीं होता, उनका दिव्य शरीर होता है और ये नहीं होता है कि उनकी आत्मा अलग है, वो आत्मा ही उनका शरीर होता है। जैसे पूरा का पूरा शरीर हाड़ मास का बना हुआ नहीं होता है, पूरा का पूरा शरीर आत्मा का बना हुआ होता है। जैसे आत्मा हमारे पास कितनी है, हमारे पास दिव्य जो है वो क्या है, बाल के, नोक के, अग्रभाग के सिर्फ एक 10,000वें हिस्से के बराबर जो है वो इतनी आत्मा है, इतना ही दिव्यता हमारे अंदर, और बाकी सारा का सारा कचरा भरा हुआ है। लेकिन जब दिव्य शरीर प्राप्त होता है, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, तो उसमें कोई कचरा नहीं होता, उसमें कोई भौतिक वस्तु नहीं होती, भौतिक चीज कोई नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ दिव्य शरीर होता है। ऐसा ही शरीर नारद मुनि को प्राप्त हुआ। जैसे भगवान का शरीर होता है पूरा का पूरा दिव्य, हम क्या बोलते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमान्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य। तो भगवान का जो दिव्य शरीर है वो चिन्मय है, सत्य से परिपूर्ण है, और उनके अंगान यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमानी, वो एक ही शरीर के किसी भी अंग से वो कोई भी कार्य कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इंद्रियां पूर्ण विकसित वृत्तियों से युक्त हैं, वो सदैव हर कार्य कर सकते हैं। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति, वो अपनी इंद्रियों से देखते हैं, पालन करते हैं, प्रकट करते हैं, किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य करते हैं। और यहाँ पर नारद मुनि के विषय में एक विशेष बात श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नारद मुनि का शरीर इतना दिव्य है कि वह अपने इस दिव्य शरीर में ही क्या करते हैं कि सृष्टियों, भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। वो सर्वशक्तिमान की दिव्य है, मतलब एकदम दिव्य इंद्रियां हैं उनकी, उनको कहीं पर भी जाने के लिए टिकट, वीजा और ये सब लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी वाहन में बैठने की आवश्यकता नहीं है। वो जब जी चाहे भगवान के वैकुंठ लोक पे चले जा सकते हैं, द्वारिका में जा सकते हैं, पृथ्वी लोक पे भ्रमण कर सकते हैं, जिस लोक में, ऊपर के लोक में, बीच के लोकों में और नीचे के लोकों में जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं। वास्तव में भक्तों ये कितना अच्छा है ना, हर कोई संसार में चाहता है, अलग अलग जगहों की यात्रा करना चाहता है और उसके लिए इच्छा सबकी होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, मुश्किल लगता है, एक तो समय है, ट्रेवल जो होता है वो करना मुश्किल लगता है, और दूसरा ये कि इतना सारा धन देना पड़ता है वो मुश्किल पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है, टिकट लेना पड़ता है वो मुश्किल लगता है। लेकिन नारद मुनि के लिए ये सब मुश्किल नहीं है, वो जिधर जाना चाहे जा सकते हैं। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है उनके पास, केवल भगवान के पवित्र नाम का सहारा लिया उन्होंने, भगवान के शुद्ध भक्तों के आदेशों के अनुसार कार्य किया और उन्हें ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। वो पंच भौतिक शरीर तो पीछे छूट गया और ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त हुआ कि जिसके कारण वो किधर भी, कहीं भी, किसी भी समय जा सकते हैं और मतलब उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो आज यदि हम भी है ना, इस संसार में बहुत सारे लोग का ये इच्छा होती है कि मैं दूसरे कंट्रीज में जाऊं, अलग अलग कंट्रीज में जाकर यात्रा करूं, ट्रेवल करूं, लेकिन इसके लिए भी अगर वो सुगमता चाहते, बस ये भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्तों का संग क्या क्या प्रदान करता है, सोच की हैरत होती है कि अगर किसी को घूमने फिरने का ज्यादा शौक है ना, अलग अलग जगहों की यात्रा करना, कोई चंद्रलोक पे जाना चाहता है, कोई सूर्यलोक पे जाना चाहता है, कोई ना अलग अलग प्लैनेट्स में जाना जाने की इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए भी इजी है। घर पे बैठो आप ना भगवान के पवित्र नाम का जप करो, भगवान के इन शास्त्रों का अध्ययन करो और शुद्ध भक्तों का संग करो, उनके आदेशों का पालन करो। ये सब छोटी छोटी चीजें बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। ये तो बहुत छोटी हैं, परंतु साधु संघ का सबसे महत्वपूर्ण जो अंग है, महत्वपूर्ण जो वस्तु हमें मिलेगी वो क्या है,
तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव परा,
क्योंकि उन शुद्ध भक्तों के हृदय में सदैव भगवान विराजमान रहते हैं, भगवान और कहीं नहीं है, वैकुंठ खाली पड़ा हुआ है
और किसी भी जगह पर भगवान नहीं आते। भगवान कहते हैं नामे वसामि नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगी नाम हृदय शुवा, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का भजन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तत्रिष्ठा मिनार, मैं वहीं पर रहता हूँ। तो क्योंकि जो शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो सदैव भगवान के पवित्र नाम का भजन करते हैं, भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में होता है। और यदि हम उन वैष्णवों से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, यदि उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तो भगवान कहते हैं गोविंद को हे न मोरा वैष्णव परा, कि मैं तो उन वैष्णवों के अहम भक्त पराधीन, मैं वैष्णवों के अधीन हूँ, वो जिसे चाहे मुझे दे दे, मैं उनकी प्रॉपर्टी हूँ। तो अगर किसी वैष्णव शुद्ध वैष्णव को हमने अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया और उनके आशीर्वाद से हमें कृष्ण के चरणों में प्रीति प्राप्त हो गई, तो इससे अधिक और हमारे जीवन का और कोई कल्याण हो ही नहीं सकता। तो यही किया नारद मुनि ने। हम देखते हैं नारद मुनि के जीवन में वैष्णव संगति, वैष्णव उचिष्ट के ग्रहण करने से और वैष्णवों के आज्ञाओं का पालन करने से कितना परिवर्तन आया। वो एक साधारण व्यक्ति, साधारण बालक से आज दिव्य शरीर को प्राप्त हुए हैं, और जहाँ दिल करे भगवान की सेवा, जिस तरह से चाहे जिधर जाए जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते, भगवान के साथ वार्तालाप कर सकते। तो उसी के विषय में आज नारद मुनि बता रहे कि जिस तरह से मरीची में शया प्राणी भ्यो अहम च जिज्ञ, मैं भी उसी तरह से दूसरे ऋषियों के साथ साथ मेरा भी प्राकट्य हुआ। और आगे भी नारद के विषय में हम सब सुनेंगे। आप सब कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छे से कर सकूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण।